मंगलम गौतमोकणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। दीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। ओके, पहले हम चार गाथाओं को पढ़ेंगे जो हमने अभी तक पढ़ ली है साथ में। ऐसा करते हैं, आप सब लोग अपने अपने फोन म्यूट कर लीजिएगा, सिर्फ कोई एक जन जो मेन रहेगा माइक वो गाएंगे और हम सब अपने म्यूट करके गाएंगे तो सिंक हो जाएगा सबका साथ में। तो कौन गाएगा अभी? रिजुल आप? हेलो रिजुल।
यस।
ओके, तो आप चार गाथाओं को गाओगे और हम सब म्यूट करके अपने अपने यहाँ पर बैठकर गाएंगे। ओके, तो आप लीड कर रहे हो हमको। ओके स्टार्ट।
जे त्रिभुवन में जीवनम सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणा दास ताहि सुनो भगवती मन आन जो चाहो अपनो कल्याण ब्रह्मण की हे बहु कथा पे कछु कहू कहे कही मुनि जता काल अनंत ने गोद मंजार वीतो एक इंद्रिय तनदार एक सास में अठ दस बार जन्मो मरो मरो दुख बार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन पवन प्रते पवनस्पति थयो।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? गुरुदेव श्री का सुना था सीधी प्रवचन, उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कुछ उन्हीं की बातों पर और हम एक ही टॉपिक पर बात कर पाए थे। कौन सा था वो टॉपिक? कोई बताएगा? समीर आप हो? हेलो समीर, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी
हाँ जी।
हेलो, हाँ समीर, आप कौन कौन है अभी एक बार आप लोग सब बताएंगे कौन कौन है?
मानस,
ये जो ये दिया
और बड़े लोगों में से
मनीष,
तेजल,
प्रीति, सिमोन,
अभी पे ही होते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी किसी एक चीज पर, मानस आपको याद है?
बारह भावना।
हाँ, बारह भावना में से कौन सी भावना? एक कोई भावना, हमने तीन भावनाओं का स्पेशली देखा था, उसमें से एक मेन थी जो गुरुदर्शन ने स्वाध्याय ली थी। बड़े लोगों में से कोई कौन सी भावना ली थी?
बोधि दुर्लभ भावना, लोक भावना।
बोधि दुर्लभ भावना, कौन से नंबर की भावना है बोधि दुर्लभ भावना? रिचुअल याद है आपको? 11th नंबर की भावना है बोधि दुर्लभ भावना, करेक्ट? 10th इज धर्म भावना, 11th इज बोधि दुर्लभ भावना एंड 12th इज लोक भावना, करेक्ट? तो बोधि दुर्लभ भावना पर हमने थोड़ी सी बात करी थी, मतलब हाँ मानस बताओ।
आप
हेलो
क्वेश्चन
है, बोधि दुर्लभ भावना के बारे में कुछ बताओगे आप? मतलब क्या बोधि दुर्लभ भावना, मतलब
के उसका मतलब होता है कि सम्यक ज्ञान को अटेन करना मुश्किल होता है।
हाँ कैसे, किस तरीके से मुश्किल होता है, मतलब बहुत टफ है वो करना ऐसा?
मुझे नहीं यार।
ओके कोई बात नहीं। रिजुल आपको पता है? हाँ बताओ।
मुझे नहीं।
हेलो
मुझे।
हाँ रिजुल बोलो बोलो। नहीं मालूम आपको? दिया आपको याद है कुछ बोधि दुर्लभ भावना के बारे में?
नो।
ओके चलो हम बड़े लोगों से पूछते हैं। ओके सिमोन जी आपको पता है बोधि दुर्लभ भावना के बारे में? हेलो
Sorry, Anubhav ji, I was talking and my mute button was on. I didn't realize that. I'm sorry,
okay,
but
okay.
I didn't realize I missed the class last time. I'm sorry, I don't know the answer.
Yeah, I know you were not there. Okay, theek hai. Preeti ji, aap the last class mein?
Haan, main thi.
Mujhe
yaad hai aur mujhe jo samajh mein aaya uske hisab se aisa hai ki like jeev ko bahut time jeev nigod mein rehta hai aur उसको मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जब संगी पंचेंद्री को ही होता है और संगी पंचेंद्री हमको बहुत 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 टाइम के बाद ऐसे गति हमको मिलती है, इसीलिए वो बोधि दुर्लभ है।
बराबर कि हम लोग ऐसी कंडीशन में रहते हैं जब हमारे पास मती नहीं होता, संगी पनाई नहीं होता है, हम एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में, पंच इंद्रिय असंगी में रहते हैं। हम सम्यक दर्शन कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हमारे पास मन हो। मन कब होता है? जब हमारे पास जो इंद्रिया जैसे मनुष्य हुए तो हम सम्यक दर्शन ले सकते हैं, देव हुए, नारकी हुए तो ले सकते हैं। तो इस बहुत कम लोगों के पास ऐसा मौका है, तो अपना काम कर सकते हो, सम्यक दर्शन ले सकते हो। इसके लिए बोधि का होना, मतलब सम्यक दर्शन का होना बहुत ज्यादा प्रेशियस है और बहुत ज्यादा मतलब हो जाए तो इट्स वेरी 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 रेयर। इसकी रियलिटी पर हमने बात करी थी, कितने सारी बात सुनने मिलती है और कितने समझकर काम कर पाती है। चलिए हमने ये वाली बात करी थी उस दिन का, आज हम आगे उसके आगे बात करते हैं। ये बोधि दुर्लभ भावना होगी, मतलब हमारे सारे लोग भावना जैसे भी हो इस मनुष्य, हम जब ये मनुष्य बन गए हैं ये वाले भव को वेस्ट नहीं करना है, हमको इधर पर सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने आगे के भवों को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है, हमको मोक्ष जाना है जल्दी। मोक्ष सम्यक दर्शन के बिना होगा नहीं, और एक बार सम्यक दर्शन तो फिर नरक गति में नहीं जाते हैं हम, बाकी के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव नहीं बनते, हम त्रियंश गति में नहीं जाते, गति में जाते हैं, देव गति में जाते हैं, उसमें भी अलग अलग तरीके बहुत सारी चीजें बंद हो जाती है। वैसे इसके लिए आचार्य देव हमेशा समत्व का उपदेश देते हैं, हमेशा उसकी सीख सिखाते हैं। ठीक है, अभी हम गुरुदेव श्री की आगे वाली बात पढ़ेंगे, हम वो वाली गाथा पे चल। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। ठीक है, तो गुरुदेव श्री आगे क्या लिया था इस पर? नित्य निगोद में अनंत काल रहा, वहां एक शरीर एक इंद्रिय उसमें अनंत अनंत जीव एक साथ मरे, एक साथ जन्मे और एक साथ श्वास लेते हैं। ये हमने पहले भी जान लिया था, करेक्ट। हमको पता है कि एक शरीर पर एक साथ जीव सांस लेते हैं, एक साथ वो उनकी डेथ होती है और फिर एक साथ वो जन्म लेते हैं। एक ही शरीर में जितने भी जीव हैं, और एक शरीर में कितने जीव हैं हमने बात करी थी कि सिद्ध तीनों काल के सिद्ध जो है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर उनके नंबर से अनंत गुने, ऐसे एक शरीर में उतने नंबर ऑफ जीव है। ओके, फिर गुरुदेव श्री ने एक ग्रंथ लिया था, ग्रंथ गोमट सार ग्रंथ। किसी को नाम सुना है गोमट सार ग्रंथ का बच्चों में से? मानव सृजुल, आप लोग को समझ में आ रही है मेरी आवाज?
हाँ जी,
हाँ जी।
ओके, हाँ, गोमट सार नाम का एक ग्रंथ है अपने यहाँ। किसने लिखा है वो कौन बताएगा? बड़े लोगों में से, छोटे लोगों में से कोई भी बताए। गोमट सार ग्रंथ की रचयिता कौन है? नहीं पता किसी को? ओके, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग पता करके आइए गोमट सार ग्रंथ की रचयिता कौन है। ये हमारा कर्णानियोग का बहुत बड़ा ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है, और इस पर पंडित टोडरमल जी ने बहुत बड़ी टीका भी लिखी है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका करके, गोमट सार चीफ कांड और कर्म कांड पर। इसको किन आचार्य ने लिखा, उन आचार्य का नाम आप लोग ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, गोमट सार से क्या बात आई थी कि निगोद का एक शरीर असंख्याता संख्यात कोड़ा कोड़ी सागरोपम रहता है। क्या कि एक शरीर हमारी बॉडी की, जैसे जैसे हम सोल जाती है तो शरीर खत्म हो जाता है, जो निगोद का शरीर है ना, एक शरीर होता है जिसमें अनंत जीव होते हैं, निगोदिया जीव। ठीक है, उस अकेली शरीर की कब तक, वो शरीर कब तक रहता है कि वो शरीर अनंतानंत कोड़ा कोड़ी सॉरी असंख्याता असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागरों तक रहता है, मतलब इट्स द इनफाइनाइट टाइम, वो अनंत काल हो जाता है। ओके, एक सागर में मतलब बहुत सारे काल निकल जाते हैं, जैसे अभी तो 24 तीर्थंकर हुए ना, राइट? तो ऐसे एक कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जो एक निगोद का शरीर, ओनली शरीर की बात कर रहे हैं, जीव तो एक श्वास में कितनी बार जा रहे हैं, 18 टाइम्स वो जन्म ले रहे हैं, वो मर रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो वो बॉडी कब तक रहती है? संख्याता संख्यात कोड़ा कोड़ी सागरों पम तक रहती है, इसकी आयु बताई बस। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव श्री ने करी थी कि निगोद में जन्म कौन लेता है। हेलो, निगोद में जन्म कौन लेता है? जीव लेता है, बराबर है। जीव का ही जन्म होता है, जीव का ही मरण होता है। कौन सा जीव? देखो, हमको ये सब मिला है ना जैन दर्शन सब सुनने को, जो इस बात का इंसल्ट करता है, उसका अपमान करता है, जो इस बात की विराधना करता है। तो गुरुदेव श्री ने बोला था तत्व का विराधक जीव इतर निगोद में जन्म लेता है, मतलब नित्य निगोद में से तो जीव कभी निकले ही नहीं, तो उसको तो गुरुदेव श्री ने बोला था अनादि तत्व का विराधक जीव वो नित्य निगोद, और वर्तमान में जो तत्व का विराधक है, मतलब तत्व की इंसल्ट करने वाला है, तत्व की विनय नहीं करने वाला है, हमें हमें अभी हम पढ़ते हैं तो हम उसके अभिनय कर देते हैं, करेक्ट। हमें समझ में नहीं आती है बात तो हम ऐसे मंदिर में भी हम बातें करने लगते हैं, करेक्ट, हम बहुत सारी स्वाध्याय चलता है तो हम बीच बीच में सो जाते हैं कई बार, बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। तो इससे क्या होती है, जिन वाणी की इंसल्ट होती है, जिन देश की इंसल्ट होती है, जिन गुरुओं की इंसल्ट होती है, इसके कारण निगोद गति का बंद होता है, इतर निगोद पर हम जाते हैं। तो गुरुदेश जी ने ये बात ली थी कि जो देव शास्त्र गुरु इनकी जो विराधना करते हैं, मतलब इनकी जो इंसल्ट करते हैं, इनकी जो विनय नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो जीव निगोद में जाते हैं। हेलो, निगोद में कौन जाते हैं? दिया, निगोद में कौन जाते हैं, कौन से जीव?
निगोद में कौन जाते हैं?
The people who insult on dharam.
What? Sorry.
The people who insult dharam.
Very good. The people who insult dharam means dev, shastra and guru. Very good. तो हमको कभी ये वाली बात याद रखना, हमको कभी इंसल्ट नहीं करनी किसी भी चीज की। आपको पता है अपने ग्रंथों में क्या आता है, जैसे कि अभी मुझको बहुत ज्यादा वैराग्य आया, ओके, और मैंने सोचा कि मैं मुनिराज बन जाता हूँ, साधु परमेश्वरी। अब मुझे अभी थोड़ा सा क्या हुआ था, मुझे बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है, और इतना बड़ा लॉस हुआ तो मुझे लगा कि संसार बहुत बुरा है। तो मुझे एक दो दिन के लिए इतना बुरा लगा कि मैंने बोला अब तो मैं दीक्षा लूंगा, और मैंने दीक्षा ली। एक दो महीने तक सब अच्छा चला, ठीक है, अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा था। एक दो महीने के बाद अब मुझे वैराग्य तो अच्छा था नहीं, वो तो लॉस था उस टाइम, तो उसका दुख था, तो मुझको मैंने वैराग्य समझ लिया। एक दो महीने के बाद अब मुझको ऐसा लगता है कि अब मैं कैसे करूं। तो जो हमने ली तो प्रतिज्ञा मुनि बन किया मैंने, और मैं फिर ऐसे काम करता हूँ जो मुनिराज नहीं करते हैं, तो मुझे निगोद का बंद होता है। मतलब ऊंची प्रतिज्ञा हम लेते हैं, हम कोई ऊंचा रेजोल्यूशन लेते हैं और हम फिर उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रतिज्ञा का भंग किया, तो उससे हमको बहुत बुरे बुरे पाप बनते हैं। तो उसमें से एक पाप होता है निगोद गति का बंध भी, ओके। तो इसके लिए अपने ग्रंथों में आता है कि जो जीव हमारे मुनिराजों का वेश बनाकर जिन धर्म का उपदेश नहीं देते, वो दूसरी बातें करते हैं, उनको निगोद में बंद होता है। ऐसा अपने मूल अष्टपाहुर ग्रंथ में आया, अष्टपाहुर कुंदकुंदाचार्य देव ने ग्रंथ लिखा है, उसमें से एक चैप्टर है भाव पाहुर। उस ग्रंथ में क्या लिया कि जो जीव जिनेन्द्र देव के जैसा वेश धारण करते हैं, मतलब नग्न दिगंबर दीक्षा धारण, मतलब वो मुनिराज बनते हैं साधु परमेश्वरी, और लेकिन जिन धर्म जिनेन्द्र देव ने जैसा बोला है उसके उल्टा काम करते हैं, मतलब आत्मा को तो प्रैक्टिस नहीं करते, बाहर की बातें करते हैं, लोगों को अलग अलग जगह जाकर उपदेश देते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, अलग अलग जगह जाकर चीजें बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, उन जीवों को अपना काम नहीं करने के कारण उन्होंने जिनेन्द्र देव के पद की विराधना करी, मतलब साधुओं का जो काम था वो नहीं किया, तो यानी साधुओं की इंसल्ट करी, इसलिए उनको निगोद गति का बंध बोला है, वो सब निगोद में जाएंगे, ऐसा वहां पर मूल गाथा का पाठ है, ओके। तो हमको यहाँ पर क्या सीखना कि मुझसे कभी भी जिन्हें धर्म की इंसल्ट नहीं हो, इसका बंध होता है निगोद गति का बंध होता है, ठीक है। हेलो, फाइन, मानस, अरुण, ओके, अच्छा। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठा था, तो कौन सा, अब आपके सामने दो चूज करने के लिए है, निगोद गति और नरक गति, तो कौन सी बेटर है बताओ, कौन सी बेटर है, निगोद गति बेटर है कि नरक गति बेटर है? नरक गति बेटर है, तो आपको नरक में जाना है?
नहीं।
तो फिर वो बेटर कैसे हुई? हाँ, मैंने वही पूछा है, इन दोनों में कौन सी गति बेटर है बताओ। नरक गति बेटर मतलब किस गति में कम दुख है, निगोद में ज्यादा दुख है कि नरक गति में ज्यादा दुख है?
नरक
कंपैरेटिवली गति हाँ
नरक
नरक गति में ज्यादा दुख है निगुत से करेक्ट
यस
हाँ के नहीं
यस
ओके कौन कौन कह रहे हैं नरक गति में ज्यादा दुख है मानस कहाँ पर नरक गति में देखो 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 अपन दो से चुन है ओके एक तो मैं बाहर पर अच्छे से घूम रहा हूँ आई कैन ब्रीथ आई कैन टॉक आई कैन ईट आई कैन स्मेल आई कैन लिसन टू यू ठीक है दूसरी सिचुएशन में इन्होंने क्या किया अनुभव को पकड़ा उसके आईज को कवर कर दिया कान को उसके ईयर बंद कर दिया नोज को बंद कर दिया मुंह को बंद कर दिया सब लॉक कर दिया मैं किस सिचुएशन में खुश हूँ बोलो हाँ हेलो आपको दो सिचुएशन समझ में आई एक सिचुएशन में तो मैं फ्री हूँ लेकिन इस संसार में ही हूँ ओके मेरे आँख नाक कान सब काम कर रहे हैं पांचों इंद्रियां हैं मेरे पास और एक सिचुएशन में मेरे ये सब कुछ कवर करके उसने एक रूम में लॉक कर दिया किस सिचुएशन में मुझे ज्यादा दुख होगा
सेकंड
क्यों सेकंड सिचुएशन में क्यों दुख हो रहा है
when you're locked in the room.
अरे आई हैव आईज आई हैव नोज बट आई कैन नॉट सी आई कैन नॉट ब्रीद क्यों दुख हो रहा है ज्यादा
because then if you can breathe you won't be able to live and because you're stuck in a locked room like you don't want to be stuck you want to be able to go
yes exactly Exactly. I want to do so much and I can do so less, right? Same way, देखो अब अपन को यहाँ पर एक बात समझनी है हमारा स्वभाव क्या है जानना देखना उसको जीव बोलते हैं जिस जो जानता है देखता है उसको जीव बोलते हैं करेक्ट तो मेरा जानना स्वभाव है तो अब मेरा जितना कम ज्ञान होगा ना जितना कम ज्ञान प्रकट होगा उतनी ज्यादा मुझे दुख होगा तो जैसे मेरे आंख नाक कान को कोई बांध दे और मुझको एक जगह रख दे तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है और मैं एकदम फ्री हूं तो मुझे दुख लगता ही नहीं कि मुझे दुख है उसी प्रकार नरक गति में पांचों इंद्रियों से जीव जान सकता है वहां पर भी आईज है नोज है ईयर्स है तो उसको उतना दुख नहीं है लेकिन निगोद गति में उसकी ज्ञान तो है ज्ञान स्वभाव है उसका नेचर तो जानना है लेकिन उसके पास इंद्रिय तो उसको इतनी ज्यादा आकुलता वाला दुख होता है जैसे हमको कोई बांध कर एक जगह बांध कर रख दे जितना हमको दुख होगा आप समझ रहे हो इसके लिए है निगोद गति से बहुत कम दुख है सबसे ज्यादा दुख निगोद में होता है क्यों क्योंकि हमारा स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान स्वभाव हमारा जो काम है हम वो ही नहीं कर पाते हैं करेक्ट आपको समझा हेलो समझा कि नहीं समझा कि वहां पर नरक गति से ज्यादा दुख क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर हमारा ज्ञान ही प्रकट नहीं हो पा रहा हमारे पास इंद्रिया इतनी हमारे पास ना तो इंद्रिया है और देखने की इतनी देखने की इच्छा इतनी है जानने की इच्छा इतनी है लेकिन जान नहीं सकते तो इसका वहां पर बहुत ज्यादा कषाएं तेज होती है परिणाम बहुत ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं ठीक है इसके लिए कहाँ पर दुख ज्यादा है नरक में कि निगोद में
निगोद में
तो हमको अब नरक गति में जाना है लेकिन निगोद में नहीं जाना है करेक्ट हाँ मतलब नरक में चला जाए तो फिर भी हमारी सिचुएशन इज बेटर करेक्ट ना नहीं 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 अरे नरक में भी जाना कैसे अच्छा है वो तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि दुख कहाँ पर ज्यादा है लेकिन गति तो कोई भी अच्छी नहीं है, हमको जाना तो सिर्फ मोक्ष में ही है, करेक्ट। गति तो चाहे मनुष्य गति हो, चाहे तिर्यंच गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे देव गति हो, सारी गतियां बेकार है, हमें किसी भी गति में नहीं जाना है, वर्स्ट सिचुएशन में भी नहीं। हमारा एम तो मोक्ष को पाना है, लेकिन जब हम बात करते कि सबसे ज्यादा दुख कहाँ पर है, तो दुख है निगोद में। कौन सी गति अच्छी है, तो कोई भी गति अच्छी नहीं है। मैं बाद में पूछूंगा तो गति ऐसा मत बताना कि नरक गति अच्छी है निगोद गति से, नहीं, दुख नरक गति में कम है निगोद गति से, ये वाली बात है। बट गति कोई भी अच्छी नहीं है, कंपैरेटिवली भी नहीं। ओके फाइन, आप बताओ मुझे, ज्यादा बुखार होना अच्छा होता है कि कम बुखार होना अच्छा होता है? फीवर, हाई फीवर अच्छा है कि लो फीवर अच्छा है? नीदर ना, फीवर ही अच्छा नहीं है मुझको, फीवर ही नहीं चाहिए। अच्छा हो या बुरा हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन मुझे फीवर चाहिए, नहीं चाहिए, करेक्ट। वैसे ही दुख चाहे ज्यादा हो या कम हो, मुझको दुख चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो ऐसे तो कोई भी गति मेरे लिए अच्छी नहीं, लेकिन हम ज्ञान करने के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंपैरेटिवली निगोद गति से नरक गति में कम दुख है। ओके चलो अब आगे बात करते हैं, वाली बात क्लियर थी ना सबको कि वहां पर दुख ज्यादा क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन उठता है लोगों का कि वहां पर तो वो जानते देखते ही नहीं है, तो फिर उनकी कषाय कैसे होती होगी? उनको तो कोई बुरा बोलने वाला नहीं है, उनको तो कोई डांटने वाला नहीं है, तो फिर उनके परिणाम कैसे बिगड़ते होंगे? तो वहां पर उनकी हमेशा बहुत तीव्र कषाय होती है। क्यों? क्योंकि उनको वो जानना इतना चाहते लेकिन जानते बिल्कुल भी नहीं है ना, इसके लिए, इस कारण वहां पर ये वाला दुख है। वहां पर ऐसा दुख नहीं है कि कोई उनको बुरा बोलता हो, कोई उनको उनके साथ बदतमीजी करता हो, कोई उनको बुरा बहुत बुरा भला बोलता हो, ऐसा कोई दुख वहां पर नहीं है। वहां पर तो ज्ञान की प्रतिष्ठा ही नहीं है, उसका बहुत बड़ा दुख है। ओके चलो आगे क्या बात, तो जो जीवन, हाँ बताइए बताइए बताइए।
This is Simone. A quick question. Can you get samyagnan if you are in naragati?
Yes, you can get samyagnan if you are in naragati. देखो, naragati में देखो samyagnan होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पंचेंद्रिय संगी होना चाहिए हमको। मतलब पांच इंद्रियां जो हमारे पास five senses हैं plus एक मन जो हमको होता है। तो आप जिस भी गति में हो, आप सम्यक दर्शन लेने की capable हो। तो तिर्यक्षति में भी सम्यक दर्शन होता है यदि आपके पास ये, तो जैसे शेर को हो गया, महावीर भगवान की पर्याय, महावीर भगवान का जीव जो था, राइट, वो शेर से पहले के भव में उनको दो मुनि राजा ने आकर उपदेश दिया था। ऐसे जो अपनी रामायण आप सुनोगे तो रामायण में एक स्टोरी आती है जटायु की, आपको पता है वो जंगल में थे तो जटायु था, इन लोगों के साथ रहता था सीता जी और राम जी के साथ, और जब रावण सीता जी को पकड़ के ले गया तो जटायु ने लड़ाई करी थी, कुछ ऐसा वो लोग उस माइथोलॉजी में बोलते हैं, नहीं सुना होगा आपने। खैर, वो एक बर्ड था, जटायु बर्ड था। ओके, तो वो भी श्रावक था, पांचवे गुण स्थान वर्ती, उसने व्रत पाल रखे थे। ओके, तो उसने पांचवे गुण स्थान का, वो रात में नहीं खाता था, वो ऐसे अभक्ष को नहीं खाता था, छना हुआ पानी पीता था बहता हुआ नदी का, ऐसे तो ऐसे तिर्यंच गति में भी होता है। अब देव गति और नरक गति में पांचवा गुण स्थान नहीं हो सकता, फोर्थ गुण स्थान यानी कि सम्यक दर्शन बस हो सकता है। तो नरक गति में अभी भी अनकाउंटेबल मींस असंख्यात सम्यक दृष्टि है, कितने अनकाउंटेबल, तो नरक गति में भी है और देव गति में तो है ही।
अच्छा,
ओके,
थैंक यू अनुभव जी।
चलिए ओके अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है, तो हम धर्म की इंसल्ट करेंगे तो इतर निगोद अभी करेंगे तो, और जिसने अनादि से तत्व का विराधना किया है वो हमेशा से नित्य निगोद में है, ठीक है। इसके बाद सिक्स मंथ्स एक समय में 608 सिद्ध होते हैं, और उन सिद्धों से अनंत इनफाइनाइट टाइम्स एक निगोदय शरीर में होते वाली बात हमने पहले करी थी। अब यहाँ पर एक बात की थी गुरुदेव जी ने, स्वभाव के भान बिना भाव कलंक की प्रचुरता से निगोदिया जीव है। मतलब निगोदिया जीवों का मूल लक्षण क्या है कि उन्होंने कभी आत्मज्ञान नहीं किया। देखना, हमने अभी यदि सम्यक दर्शन यानी कि आत्मज्ञान, ओके, हमने अभी सम्यक दर्शन नहीं किया ना इस बार, तो हम अल्टीमेटली कहाँ जाने वाले हैं? निगोद में जाने वाले हैं, ये गारंटीड है। अभी हमने अपना काम नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं किया, तो हम पक्का कहाँ जाएंगे? निगोद में जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसका रीजन ये है कि हम लोग मैक्सिमम टाइम पीरियड जब तक यहाँ पर बाकी की गतियों में रह सकते हैं वो है 2000 सागर, 2000 सागर से कुछ ज्यादा, उससे ज्यादा कोई भी जीव नहीं रह सकता यहाँ पर। आप चाहो कि आप मनुष्य बन जाओ हर बार, ऐसा नहीं होता है। आप 2000 सागर तक यहाँ पर रहोगे, फिर आप निगोद में जाओगे, फिर वहां से निकल के आओगे, तो मैक्सिमम, कम से कम तो आप अभी आए और वापस निगोद में चले गए, मैक्सिमम आप रहोगे तो 2000 सागर तक रहोगे। उसमें भी मेजोरिटी टाइम हम देवगति और नरक गति में रहते हैं, मनुष्य गति में तो बहुत कम टाइम हम रहते हैं, ओके? तो इसके लिए अल्टीमेटली तो हमको कहाँ जाना है? जाना है कब? जब हमने यदि सम्यक दर्शन मतलब अपना स्वभाव का ज्ञान नहीं किया। तो गुरुजी ने वही बोला था कि स्वभाव के ज्ञान के बिना हमारे भावों में क्या है? कलंक है, एक ब्लॉट है। क्या? कि हमने अपना काम नहीं किया, तो अपना काम नहीं करने के कारण निगोद अवस्था है। अब देखो यहाँ पर जो एक नई बात आई थी जो हमने शायद नहीं सुनी होगी, एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवे भाग में अनंत चौबीसी होती हैं। ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन में जितने सिद्ध हैं उनसे अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में है। क्या आपको पता है पांच प्रकार के परावर्तन? देखो मानस, जो आपके पास अभी बॉडी है ना, हेलो मानस, जैसी की जैसी बॉडी है, जैसी आपकी नोज है, जैसी आईज है, जैसे ईयर्स है, जैसी आपकी आवाज है, ऐसी की ऐसी सेम बॉडी आपको अनंत बार मिली, सेम की सेम, ओके? जिस सिटी में आप रह रहे हो वैसी की वैसी सिटी। आपको कई बार ऐसा लगता है क्या कि ये वाला काम पहले भी हुआ है? कभी ऐसा किसी को भी लगता है आप में से कि हाँ ये पहले भी हुआ, ये मैंने पहले किया है कुछ? कभी ऐसा कुछ आता है? टीम्स कभी कभी कई लोगों को आते हैं, क्योंकि हमको पहले से पता हो जाता है इसके बाद ये होगा, वी जस्ट इन अनकॉन्शियसली हमको पता रहता है कि हाँ अब ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं, मैं जाता था पाठशाला है वहां पर कुछ बच्चे ऐसे पूछते थे कि हमको कई बार ऐसा लगता है। देखो हमको ऐसा का ऐसा जैसा भी संयोग बन रहे हैं ना, वैसा का वैसा, जितना एजुकेशन हमने लिया है उतना एजुकेशन, जितने ग्रेड्स अभी हमको मिलते हैं उतने के उतने ग्रेड्स, ये सारे हमको अनंत बार वैसे के वैसे मिले एकदम डिक्टो, ओके? इसको बोलते हैं ऐसा दोबारा मिलना। मतलब अब मानस अभी आपकी जैसी देह है ना, वैसी जब आपके दोबारा मिलेगी, तो इस पीरियड से लेके उस पीरियड के बीच का जो काल है अभी के मिलने से लेके नेक्स्ट टाइम मिलने तक का, इसको बोलते हैं एक पुद्गल परावर्तन। यानी कि जैसा भी पुद्गल द्रव्य मेरे पास था ये शरीर, वैसा का वैसा पुद्गल द्रव्य मुझे वापस वही के वही परमाणु मिले, जिन परमाणुओं से ये देह बनी थी, ये शरीर बना था, जिन सब्सटेंस से, उन सब्सटेंस से वापस ही शरीर बना, बराबर? तो इसको बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को बिटवीन द टू सेम बॉडीज जो टाइम पीरियड जाता है उसको बोलते हैं एक पुद्गल परावर्तन, ठीक है? हेलो, समझा एक पुद्गल परावर्तन क्या होता है? ठीक है, अब इस एक पुद्गल परावर्तन का इनफाइनाइट, वन बाय इनफाइनाइट टाइम लेते हैं हम, जैसे हम लेते हैं ना हंड्रेड पार्ट लो, इसका इनफाइनाइट अनंतवा भाग लेते हैं हम, ओके? इसको हमने अनंत भागों में डिविजन किया और उसमें से एक भाग उठाया, उस एक भाग, वो इतना बड़ा टाइम पीरियड होता है कि उसके उसमें इनफाइनाइट सॉरी अनकाउंटेबल चौबीसी निकल जाती है। जैसे अभी अपने 24 तीर्थंकर हुए ना, ऐसे अनकाउंटेबल 24 तीर्थंकर उसके इनफाइनाइट पार्ट में निकल जाते हैं, इतना बड़ा उसका इनफाइनाइट टाइम है। क्या एक पुद्गल परावर्तन का इतना सारा टाइम है कि उसके इनफाइनाइट पार्ट में अनकाउंटेबल 24 तीर्थंकर हो जाते हैं, मतलब पहला काल आ जाता है, दूसरा काल, तीसरा काल आ जाता है, फिर चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, फिर पांचवा काल में हम सब होते हैं, फिर छठवा काल आ जाता है, फिर छठवा काल आता है, पांचवा आता है, फिर चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, फिर तीसरा होता है, दूसरा होता है, पहला होता है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, फिर सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, वन, ऐसे अनकाउंटेबल टाइम्स चौबीस तीर्थंकर अकेले हो जाते हैं। 24 तीर्थंकर कितने हो गए, तो उसमें 608 जी वास तो हो ही रहे हर 6 महीने 8 समय में से। हाँ
अनुभव जी, आपने बोला कि
हाँ।
एक एक पुद्गल परावर्तन में के अनंत विभाग में असंख्य 24 ही होते
हाँ।
हैं कि अनंत 24 ही होते हैं, कि गुरुदेशी ने शायद
नहीं असंख्य
गुरुदेशी के प्रवचन में अनंत 24 ही आएगा।
ओके नहीं मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, वो असंख्यात होता है, क्योंकि मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक है, गुरुदेव श्री के प्रवचन में अनंत आया था, वो बात बराबर है।
okay.
एक पुद्गल परावर्तन के अनंत विभाग में अनंत 24 ही होते हैं, ठीक है वो हम कंफर्म कर लेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि इतना तो एक वो पुद्गल परावर्तन का इनफाइनाइट पार्ट है, ठीक है, उसमें 24 ही अकेली इतनी हुई है, तो 24 तीर्थंकर तो इतने काल में होते हैं। एवरी सिक्स मंथ एंड एट समय में तो 608 जीव हो ही रहे हैं, तो इतने सिद्धों का प्रोडक्शन उसके इनफाइनाइट पार्ट में हो रहा है, इतने जीव सिद्ध बन रहे हैं। इन सारे सिद्धों को ले लो अब, जो इतने अनंत पुद्गल परावर्तनों में हुए, उन सारे सिद्धों से इनफाइनाइट टाइम्स एक निगुदिया शरीर के जीव में जीव होते हैं, शरीर में जीव होते हैं। मतलब यहाँ पर गुरुदेव श्री ये बता रहे थे कितने सारे जीव एक शरीर में है, मतलब हम बोल तो देते हैं कि इन जितने सिद्ध हैं उनके इनफाइनाइट टाइम्स हैं, मतलब कितने सिद्ध हैं इसका तो हमको खबर होना चाहिए ना, कि टाइम की कभी बिगनिंग नहीं है, तो सिद्ध हमेशा से हर सिक्स मंथ एक समय में होते आ रहे हैं और फ्यूचर में हमेशा से होते रहेंगे। वो टोटल इतने जीव नहीं होंगे जितने उसने गोदिया कि एक शरीर में जीव है, बराबर। इसके बाद गुरुदेव श्री ने वही लिया था कि ऐसा बोलकर पंडित जी दुर्लभता बताते हैं मनुष्यपने की और सम्यक दर्शन की, कि हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, मनुष्यपने को अच्छे से नहीं संभाला, तो हमको क्या हुआ, हमको इतनी बार निगोद में जाना पड़ा, इतनी बार इतने दुख सहने पड़े। फिर गुरुदेव श्री ने लिया था आलू प्याज आदि जमीकंद में ये निगोदिया जीव होते हैं, हम लोग तो कोई नहीं खाते है ना, ये आलू प्याज और जितने भी जमीकंद होते हैं, रूट वेजिटेबल्स होती हैं, इन सब में निगुदिया जीव होते हैं। उसके बाद एक बात ली थी गुरुदेव श्री ने, जिस प्रकार एक कमरा होता है उसमें जाता है आता है पर वह कमरा भरा रहता है, जैसे कि एक कमरा हो उसमें मैं अंदर गया, एक रूम के अंदर मैं गया, मैं आया बाहर, फिर मैं अंदर गया, फिर मैं बाहर आया, वहां जाकर सो गया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, ऐसे ही निगुदिया जीव का शरीर है, उसमें जीव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, शरीर वहीं का वहीं रहता है, जैसे वो रूम रहता है वो वहीं का वहीं रहता है, ओके, फिर बदल नहीं होता है। उसके बाद गुरुदेव श्री ने एक बहुत, आपको पता है अपन लोग इतनी बात करते हैं ना नरक गति में कितने दुख है, अभी आगे आएगा। देखो नरक गति में जब हम जन्म लेते हैं तो क्या होता है, जैसे अभी मैं यहाँ मनुष्य गति से मेरा मरण हुआ और मैंने नरक गति में जन्म लिया, ओके, तो क्या होगा कि नरक गति तो बहुत नीचे है ना, तो मेरा अंतर, मेरा कुछ ही समय में शरीर बन जाएगा और मैं सीधे सिर के बल नीचे तक जाऊंगा और अपने सिर के बल गिरूंगा, कहाँ पर, नरक गति में। तो जैसे कि हम एक बॉल को फेंकते हैं जमीन पर तो बॉल वापस ऊपर उठती है, राइट, वैसे ही मैं सिर के बल नीचे गिरूंगा बट वो जमीन इतनी हार्ड रहेगी कि वो मुझे वापस ऊपर फेंकेगी, तो मैं वापस ऊपर आऊंगा, फिर मैं नीचे गिरूंगा, फिर ऊपर आऊंगा, ऐसे जैसे कि एक बॉल ऊपर नीचे होती रहेगी, ऐसे बहुत टाइम तक मैं ऊपर नीचे होता रहूंगा, ठीक है। तो मुझको इतना वहां पर दर्द होता है, इतना ज्यादा वेदना होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता, एकदम से मैंने वहां जन्म लिया है, अभी मनुष्य गति में अच्छा खासा था, यहाँ पर मरण हुआ, तुरंत विद इन सेकेंड्स मैं वहां पर जाकर सिर के बल नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर गिरा, फिर ऊपर उठा, बॉल के जैसे, लाइक एक बॉल के टॉस होते रहते हैं, एक बार गया फिर वो टिप, टिप लेती है, फिर खाया फिर वो टिप लेती है, राइट? ऐसे मैं ऊपर नीचे होता रहता हूँ, ओके? पता है इतनी इतने टाइम तक हम वहां पर दुखी रहते रहते हैं, तो एट लास्ट क्या होता है, हम वहां पर दुख से एडजस्ट हो जाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद हमको वहां पर वो दुख इतने ज्यादा दुख रूप नहीं लगते। मुझे कोई वहां पर काटे मारे, मुझे उबाले वहां पर, मुझे खाना खाने नहीं मिले, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों को दुख दुख जैसे नहीं लगते ना, कि चलो ये तो यहाँ पर होता है, हम ऐसा लगता है कि चलो इतना तो मनुष्य गति में होता है, अपना कुछ लॉस हो गया तो हम मान लेते चलो कोई नहीं, किसी ने हमको गाली दी तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें भोजन करना पड़ता है तो हमें लगता है कोई बात नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा, हमें दुख रूप नहीं लगता, करेक्ट? वैसे ही वहां पर जब भी हम जिन दुखों को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भोगते तो दुख रूप नहीं लगते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो गुरुदेव श्री ने एक बात ली थी यहाँ पर कि जहां पर गया वहां पर माथा फिर गया, पैसा हो थोड़ा और हैरान होता है लेकिन पैसे में सुख मानता है। जहां पर हम जाते हैं, हाँ बताइए बताइए,
आपने जो बोला कि वो जब नरक में जाता है और विदिन अ सेकंड नरक में जाता है, तो उसका बॉडी मतलब जैसे ही मेरा यहाँ मरण हुआ तुरंत हम नरक में जो गए तो बॉडी मिल जाता है उतनी देर में?
नरक और देवगति शरीर होता है, पांच प्रकार की बॉडीज होती है, हमारा जो बॉडी औदारिक शरीर, ओके, हमारे बॉडी को ग्रोथ होनी होती है। वैक्रियक शरीर जो होता है उसको ऐसा नहीं होता है स्टेजेस के, पहले वो बर्थ लेगा फिर बड़ा होगा, वो जैसे ही यहाँ से जाते हैं बर्थ ले तो जन्म से ही बड़े होते हैं हमेशा। तो देव भी उनका कोई माता पिता नहीं होता देवों का, वो हम डायरेक्टली वहां पर जाकर उपपाद शैया होती है वहां पर। तो जैसे कि अपन लोग नींद से उठते हैं ना सुबह उठकर, वेक हम मॉर्निंग में उठते हैं, वैसे ही देव एकदम नींद से वहां पर उठते हैं पूरा का पूरा शरीर, और फिर उनको विचार आता है अरे मैं कहां पर आ गया। ऐसी नरक गति में जब वो जीव जाते हैं तो विद इन अंतर मुहूर्त मतलब विद इन अ मिनट उनका पूरा बॉडी बन जाता है, और वैसे ही बिल्कुल वो बड़े नहीं होते, जितने रहते हैं उतने ही रहते हैं। तो उनका पूरा जैसे भी हम लोग जैसे कि यूथ में रहते हैं एकदम पूरा बॉडी बना हुआ, वैसे ही उनका बचपन से ही होता है, मतलब स्टार्टिंग से, ओके? लेकिन आश्चर्य वाली बात यह कि हम वहां पर गए निगुद में, मैं भी यही सोचता था कि फिर वहां पर इतने दुख है तो कैसे रहता होगा, बट ये गुरुदेव श्री बोल रहे थे कि देखो मोह की महिमा, जहां पर गया वहां पर ही ऐसे ही होता है, ऐसा मान लिया, दुख को दुख रूप स्वीकारा नहीं, उसको स्वभाव मान लिया कि हाँ ऐसे ही होता है। तो मनुष्य गति में हमें बहुत दुख दिखता है, नहीं ऐसा तो होता है, नरक गति में गया तो ऐसा तो होता है, तो वहां पर भी इसको दुख दुख रूप लगे नहीं। समझे आप लोग क्या बात बताई थी गुरुदेव श्री ने, कि जहां पर जाते थे निगोद गति में भी हमने अनंत काल बिता दिया, तो अनंत बार जन्म मरण की आवाज कषाएं तो तीव्र रही, लेकिन अनंत काल तक निकले क्यों नहीं नित्य निगोद से, कि वहां पर उसी दुख को अपना स्वभाव हम मानते रहे, ये वाली बात गुरुदेव श्री ने ली थी, ठीक है? हेलो, ठीक है, हुआ समझे आपका आंसर? हुआ
हाँ, समझ
में। उनका वैक्रियक शरीर है तो उनके शरीर में ऐसा जन्म नहीं होता है कुछ ऐसा। फिर गुरुदेव श्री ने बताया था कि नरक का दुख जो बोलते हैं वो पंचेंद्रिय की अपेक्षा से बोलते हैं, पर निगोद का दुख तो मिथ्यात्व और कषाय की तीव्रता से है, जो हमने भी एग्जाम्पल से समझा कि उनकी कषाय बहुत तीव्र है, उनको मिथ्यात्व तो बहुत तीव्र है। यहाँ पर तो हम जीवों को समझाते हैं कि अब भैया ये पांच इंद्रिय के दुख है तो उसके हाथ काट दिए, उसकी आंखें निकाल दी, यहाँ पर तो हमारे पास इंद्रियां है, वहां उसके पास इंद्रियां ही नहीं है तो हम उसको कैसे समझाएं कि हमारा दुख है? तो वहां पर दुख इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, कषायों की अपेक्षा है, ओके? उसके बाद दो पॉइंट्स हैं, वो वाली हम बात करते हैं। जन्म मरण का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं, वास्तविकता में वो कषाय की तीव्रता का है। हम लोग बोलते हैं ना हमारे दो रोग हैं जन्म मरण, जन्म में बहुत दुख होता है जब हम जन्मते हैं और जब मरण लेते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन हमको जन्म का कुछ याद है क्या मानस आपको, कि कब आपने जन्म लिया था, दिया आपको याद है जब आपका बर्थ हुआ था तब आपको कितना पेन हुआ था? दिया
नो
नहीं याद है ना, और अभी तक हमारा मरण तो आया नहीं, तो हमको ये भी नहीं पता है कि मरते समय भी कितना पेन होता है। तो देखो, जन्म की प्रोसेस और मरने की प्रोसेस, इसमें दुख नहीं है। दुख किसमें है? जन्म मरण के समय होने वाले हमारे जो परिणाम है उनमें है। हमारी कषाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं जन्म मरण के समय पर कि हमें इतने ज्यादा संक्लेश परिणाम होते हैं, गंदे वाले परिणाम होते हैं कि कई जीव तो वहां पर जन्म और मरण के समय गति का बहुत बुरा बंद कर लेते हैं। तो जन्म मरण का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं है, जन्म मरण का दुख वास्तविकता में कषायों की अधिकता का दुख है कि वहां पर हमारी कषाय बहुत तेज होती है तो उसका दुख है। फिर गुरुदेव श्री ने इसी को आगे लेकर बोला था कि हमें शरीर का यानी बॉडी का इतना प्रेम है, इतना राग है कि चलने की खबर नहीं, इस एकत्व बुद्धि की, इसके लिए हमको एक, हमें इतनी पसंद है ये देह कि हमको गुरुदेव श्री बोल रहे थे कि हमें देह इतनी पसंद है कि फिर हमको एक समय में 18 नई नई देह, तुमको नई अच्छी लगती है ना देह, तुम्हें हम एक मिनट में 18 बार देह मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि हमको जितनी ज्यादा बॉडी से राग होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी में हमको देह मिलेगी, मतलब उतना अल्प जन्म उतनी ज्यादा देहों का बदलना। मतलब हमारे शरीर में भी एकत्व बुद्धि है तो क्या होगा कि निगुदिया जीव को तो 18 बार एक बार में शरीर मिलता है ना, एक एक श्वास में उसको 18 टाइम्स देह मिलती है। तो गुरुदेव श्री ने बोला था कि ये शरीर से इतनी एकत्व बुद्धि करता है इसके कारण इसको इतनी सारी देह मिलती है। तो अपना एक समाधि तंत्र ग्रंथ है ओके, उसमें गाथा है कि इस शरीर का कारण क्या है, इस शरीर के होने का कारण यही है कि हमें शरीर से राग करते हैं, इस कारण ही शरीर होता है। जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आए और हम उससे बात नहीं करें, उसको पानी के लिए नहीं पूछें, उसको खाने के लिए नहीं पूछें, तो क्या वो ज्यादा देर तक रुकेगा? आपके घर में कोई आते हैं तो आप ऐसा करते हो तो ज्यादा देर तक कोई रुकेगा क्या वो? हेलो, यस और नो? नहीं ना। अच्छा, आप लोग के घर में कोई आता है तो आप पानी के लिए पूछते हो कि नहीं पूछते हो?
Yes.
पूछते हो आप लोग, पहले जय जिनेंद्र करते हो कि उनको, कोई बड़े लोग हैं तो उनके हम चरण स्पर्श भी करते हैं, पैर भी छूते हैं, डू वी डू दैट? हम करते हैं क्या मानस?
हाँ.
कोई बड़े लोग आते तो उनके पैर भी हम छूते हैं बराबर, ये हम सबको करना चाहिए ठीक है, हम लोग को बचपन में सिखाते हैं मम्मी पापा लोग ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आपके घर पर आएगा और आप उसको ऐसे रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा?
नहीं
नहीं लगेगा। वो ज्यादा देर फिर आपके घर में रुकेगा? नहीं रुकेगा। ऐसे ही हम इस शरीर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसको प्यार से रखते हैं, इसलिए हमको बार बार मिलता है। आचार्य देव कहते हैं कि तुम इस शरीर को थोड़ा पूछना छोड़ो, इसको मत दो जो इसको चाहिए, तो ये अपने आप शरीर तुम्हें मिलेगा नहीं। तो इस संसार का मूल है देह में निज का ज्ञान, ये आचार्य देव की मूल गाथा है ओके। तो गुरुदेव श्री ने ये बोला था कि ये इस शरीर में इतना मस्त है, इसके लिए इसको इतने सारे शरीर मिलते हैं। चलो, हमने क्या, आप इन शॉर्ट गुरुदेव श्री ने इनमें क्या बात करी कि निगुड़िया जीव को जो 18 बार जन्म मरण है वो 5 इंद्रियों का नहीं है, कषायों के कारण उसको दुख है, निगोद गति में नरक गति से भी अधिक दुख है, हमने कभी अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं किया, बोधि दुर्लभ भावना को भाकर सम्यक को धारण नहीं किया, इसके लिए ये दुख है ठीक है, और हमने हमेशा शरीर को बहुत ज्यादा स्नेह दिया, प्यार किया, इस कारण हमको शरीर इतने ज्यादा मिले कि हमने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया ठीक है। इतना समझा? हेलो सबको?
हाँ जी।
तो आश्चर्य करने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम जहां पर भी जन्म लेते हैं, वो स्टोरी आती है, एक सेठ था, उसको पता पड़ा, उसको एक मुनिराज ने बताया कि तुम अभी आज रात को मरोगे और अपने ही जो तुम्हारा घर है ना उसमें जो टॉयलेट है ना उस टॉयलेट में जहाँ गंदगी होती है वहां पर तुम कीड़े बनोगे, ठीक है। उसको क्या बोला कि तुम जहाँ पर अभी तुम जो जिस घर पे रहते हो ना टॉयलेट है जो तुम्हारा घर वहां पर ही तुम क्या बनोगे, एक इंसेक्ट बनोगे, कीड़ा बनोगे, सात कलर का कीड़ा रहेगा, वो सतरंगी कीड़ा होता है जो भी रहता है उसकी पहचान के लिए, ओके। तो वो एकदम टेंशन में आ गया, मैं कैसे रहूंगा इतनी गंदी जगह पर बाथरूम में, ठीक है, मैं अपने घर के वॉशरूम में कैसे रहूंगा। तो उसने अपने बेटों को बुलाया और बोला देखो बेटा मुनिराज ने बोला है, तो मुनिराज कभी गलत तो बोलते नहीं है, तो अब देखो बात तो सच्ची है, अपन को विश्वास तो करना पड़ेगा। तो तुम क्या करना, मैं जैसे ही वहां पर जन्म लूं मैं देखूं तुम मुझको मार देना, मैं वहां कैसे रह पाऊंगा इतनी गंदगी में। उनके बेटों ने बोला ठीक है पापा हम ऐसा करेंगे। तो अब यहाँ पर शाम हुई, सेठ की मृत्यु हुई और उसने वहां पर बर्थ लिया अपनी गंदगी में वहां पर टॉयलेट में, ओके। एंड इसके बेटे तो वही खड़े थे टॉयलेट में देखने के लिए कि क्या है। तो जैसे ही इसने वहां पर बर्थ लिया तो बेटों ने देखा तो वो इसको मारने दौड़े, ठीक है, जैसे इसको देखे, क्योंकि ये जो जीव होते हैं ना ये समूर्छन जीव होते हैं, मतलब ये अपने आप उत्पन्न होते हैं, इनके पेरेंट्स नहीं होते जनरली। आप बारिश में देखोगे तो अपने आप ट्यूबलाइट के आसपास जीव उत्पन्न हो जाते हैं, करेक्ट, होते हैं कि नहीं होते हैं। हेलो,
हाँ जी
होते हैं ना, वो अपने आप होते हैं, इनके कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो वो वहां पर उत्पन्न हुआ, इसके बेटे उसको मारने के लिए दौड़े, तो वापस वहां पर गंदगी में जाकर छिप गया। फिर जब भी ये बाहर आता था उसके बेटे वापस मारने दौड़ते गंदगी में जाकर छिप जाता। तो भाई इसको तो पहले मरना था, अभी मर क्यों नहीं रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है मरने के लिए। हाँ हेलो दिया, क्यों नहीं आ रहा है फिर वो, उसने बोला था ना अपने बेटे को कि मार देना मुझको, फिर क्यों नहीं आ रहा है वो। या कि हम जहाँ पर भी हमें जो बॉडी मिलती है हम उसको पसंद करने लगते हैं, वो फिर कितनी भी गंदी जगह पर क्यों ना हो, बॉडी कितनी भी गंदी क्यों ना हो, हम नरक में हो, हम तिरंजकति में हो, हम कैसे भी हो, हमको वहां पर अच्छा लगने लगता है। इसको बोलते हैं देह में एकत्व बुद्धि, ओके। तो यही गुरुदेव श्री बोल रहे थे कि शरीर के होने का मूल कारण क्या है, हम शरीर को अपना मानते हैं ये, तो हमको अब क्या करना है, भेद ज्ञान करना है। हमने पढ़ा था जीव अजीव के पाठ में दिया, जीव मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं, मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, शरीर कुछ भी नहीं जानता। इसको बोलते हैं भेद ज्ञान, हमको हमेशा ये वाला भेद ज्ञान करना चाहिए, ठीक है। अभी आई गेस हमारा टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे सीडी प्रमोशन से स्टार्ट करेंगे, ओके। अभी तक की बात में जो भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, हेलो, देखो अभी तक की जो बात थी वो थोड़ी टफ बात थी, अब एकदम एकदम इजी बात चलेगी, ठीक है। अब गुरुदेव श्री का जो स्वाध्याय रहेगा ना, अब बहुत उसमें यानी कि ऐसे फैक्ट्स बताएंगे अब नए नए कि अच्छा अभी निगोद तक का तो हमें पता नहीं, लेकिन अब हमने देखा है ना, हमने वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देखा है, बोले इंसेक्ट्स के बारे में पता पड़ेगा, ठीक है। अब वो हमारी बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, निगोदिया जीव तो हमको दिखते नहीं, अब जो दिखते हैं अब उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास से आगे बात करते हैं गुरुदेव श्री का स्वाध्याय सुनकर, ओके। तो अभी हम चिन्मानी स्तुति करेंगे, ओके दिया चिन्मानी स्तुति कराओगे आज आप,
ओके जावनी
से
सुजे लोकालो सुवानी मस्तक नमो सदा देखो
नौ बार नमोकार मंत्र।